उसने भारी मन से फोन उठाया।
क्या होने वाली बीवी?
उसकी आवाज में एक मोहक खनक थी।
तुमने फोन ऑफ कर दिया? पता है ना मुझे तुमसे कितनी बातें करनी है। अगर तुम कहो तो मैं मिलने आ जाऊं।
मनाल की आवाज ठंडी पड़ गई।
नहीं, अगर कोई जरूरी बात है तो फोन पर ही बता दीजिए। और हाँ, अभी मुझे बीवी कहने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी शादी अभी हुई नहीं है।
ठीक है ठीक है, आज नहीं तो परसों बजाएगी, फिर तो तुम मेरी ही बाहों में होगी। सही कहा ना मैंने?
मनाल की आंखें छलक आईं। अब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि उसके साथ इस तरह बात करे।
जब शादी होगी तब देखा जाएगा, अभी मुझे बीवी कहने की जरूरत नहीं है, उसकी आवाज भर्राई हुई थी।
आदित्य को उसका दर्द सुनाई दे रहा था, इसलिए उसने तुरंत बात बदल दी।
एक एक्सीडेंट या कुछ और?
मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था। आदित्य गंभीर हो गया।
मैं दो एम्प्लॉय भेज रहा हूं, रीता परेरा और रतन कुमार।
क्यों, किस लिए? मनाल चौंकी।
तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट जितना साधारण लग रहा है उतना है नहीं। मुझे पूरा शक है कि वो हादसा था ही नहीं, करवाया गया था। और मुझे लगता है इसका सीधा रिश्ता तुम्हारे फैक्ट्री से जुड़ा है, और तुमसे भी।
मनाल की आंखें फैल गईं।
और जो वादा मैंने किया था तुम्हारे बिजनेस को सपोर्ट करने का, वो मैं निभाऊंगा। डरने की जरूरत नहीं, थोड़े ही दिनों में सब साफ हो जाएगा। और अगर मैं अपना वादा निभाऊं तो तुम्हें भी अपना वादा निभाना होगा। सही कहा ना मैंने?
मनाल की उलझन। रिश्ता, लेकिन किस कीमत पर?
शायद हमारा रिश्ता भी उतने ही दिनों का है जितने दिन उसका मन मुझसे नहीं भरता, वो खुद से कहती है। उसे मुझसे क्या चाहिए ये तो साफ है, और मुझे हर हाल के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन उसे इस बात पर हैरानी थी कि जब वो पहली बार उसे मिलने आया था तो मनाल को लगा था वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात करेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि शादी के बाद प्रॉपर्टी पर मेरा कोई हक नहीं होगा और तलाक के बाद मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मगर उल्टा, उसने अपने माँ बाप को रिश्ता लेकर भेजा, पूरे मीडिया में सगाई की खबर फैली दी, अब शादी भी मीडिया के सामने, बिजनेस वर्ल्ड और समाज में उसका कद ऊंचा हो गया था। अब वो मनाल आदित्य राजवंश थी, कानूनी तौर पर आदित्य की पत्नी। गृह प्रवेश, रस्में निभी मगर मन में हलचल थी। घर आ गया, चलो बीवी, आदित्य ने गाड़ी रोकी।
चलो उतरो बीवी, वो मुस्कुराया।
तभी उसकी भाभी और माम आ गए। ऐसे कैसे उतारोगे, रुको। उन्होंने बड़े प्यार से मनाल को गाड़ी से उतारा। फिर पूरे रीति रिवाज से गृह प्रवेश हुआ। हर रस्म आदित्य ने मन से निभाई। वो मुस्कुरा रहा था जैसे सब कुछ सामान्य हो, लेकिन मनाल का दिल बार बार सवाल पूछ रहा था, क्या ये सब सच है या कोई और चाल? मनाल के पापा महेश खन्ना एक इज्जतदार बिजनेसमैन थे। इस शहर में उनका नाम था, उनकी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री थी। माँ एक खुशमिजाज गृहिणी और छोटा भाई विदेश में MBA कर रहा था। मनाल ने हाल ही में MCOM पूरा किया था। पढ़ाई के बाद उसने शौकिया तौर पर पापा का ऑफिस ज्वाइन किया। कुछ ही समय में उसकी शादी की बात चलने लगी थी। जिस लड़के से रिश्ता तय हुआ था वो उसे पसंद भी आ गया था। सगाई की तारीख भी लगभग तय थी, मगर तभी एक एक्सीडेंट में उसका सब कुछ बदल गया। महेश खन्ना कोमा में चले गए। अब फैक्ट्री को देखने वाला कोई नहीं था। भाई विदेश में था, माम घरेलू महिला थी। मनाल ने पूरी कोशिश की फैक्ट्री संभालने की, काम को आगे बढ़ाने की, मगर उसे हर कदम पर विफलता मिली। मजदूर हड़ताल पर उतरने वाले थे, कच्चा माल आना बंद हो गया था, तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं थे, कोई बैंक लोन नहीं दे रहा था। मनाल बुरी तरह टूट रही थी। इन्हीं हालातों में उसका फोन आया, वो मीटिंग करना चाहता था। मनाल हैरान थी, उसे लगता था वो उसकी फैक्ट्री खरीदना चाहता है या शायद उसे ब्लैकमेल करना चाहता है, पर उसके सामने मना करना मुश्किल था। वो अब शहर के सबसे ताकतवर बिजनेस टाइकून में से एक था। मीटिंग तय हुई संडे शाम मनाल के ऑफिस में। जब आदित्य सामने आया, मनाल की आंखें फटी रह गईं। कॉलेज का चॉकलेटी बॉय अब एक बिजनेस सम्राट बन चुका था। बेहतरीन सूट, ब्रांडेड घड़ी, सेट बाल, गहरी आंखें, गंभीर चेहरा। उसकी मुस्कुराहट अब भी वही थी, मगर असर अलग था। मनाल के दिल में जलन थी, नफरत और मजबूरी के बीच फंसी हुई थी वो। वो जानती थी उसकी कोई हैसियत नहीं, मगर बात करनी जरूरी थी। वो चाय का कप उठाते हुए बोला, मैं सीधे बात करूंगा, बिना घुमाए फिराए। वो क्या ऑफर लेकर आया था? क्या वो वाकई उसकी फैक्ट्री खरीदना चाहता था या कोई और इरादा था उसके मन में? मनाल को मिल गया था जवाब, मगर उस जवाब के साथ आया था एक और सवाल, क्या मैं इस सौदे के लिए तैयार हूं?